جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو اس کلاس کے اندر ہم اخلاق و عادات نبویہ یعنی شمائل پڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 22 ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس کے اندر، تو اس کے آگے ہم جاری رکھتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 23، اس میں حضرت فرماتے ہیں، یعنی یہ ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ تسہیل بہشتی زیور میں سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کا پیج نمبر 125 اس وقت چل رہا ہے، 125، جس کے اندر 23واں پوائنٹ ہے کہ خطیب رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آگے سے کھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوارے لائے جاتے تو ہر طرف سے لے لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جب دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے نا، تو اس زمانے میں جو ہے وہ نارم تھا کہ لوگ ایک ہی تھال سے کھاتے تھے، یعنی ایک بڑا سا برتن ہوتا تھا، اسی کے اندر ہی جو چیز موجود ہوتی تھی تو سب اس کے چاروں طرف بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے. اب بھی کچھ لوگ ایسے کھانا کھاتے ہیں، خصوصاً جو اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں مدارس کے اندر، تو وہاں پہ یہ طریقہ الحمدللہ ابھی بھی رائج ہے، لیکن عمومی طور پر ہم جو ہے وہ سب اپنی اپنی پلیٹ الگ الگ کر کے کھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جب دوسروں کے ساتھ کھاتے تھے تو پھر صرف اپنے سامنے کی جگہ سے کھاتے تھے نا، تو یہ اچھے اخلاق ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں جو جس جگہ سے وہ کھا رہے ہیں، تو اگر آپ ان کی طرف ہاتھ مارتے رہیں گے تو ان کو بھی جو ہے وہ طبعی طور پر یہ اچھا نہیں لگے گا، یا ان کی طبیعت کے اوپر یہ بات اچھی نہیں گزرے گی کہ بھئی میرے سامنے جو کھانا موجود ہے تو اس کے اندر سے یہ کیوں لے رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس طریقے سے اخلاق سکھلایا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ تنگی محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. اگر تو ہم کھانا مل کر کے ایک ہی تھال سے کھا رہے ہیں تو اس میں تو ظاہری طور پر بھی اس خلق کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے سامنے سے کھائیں، دوسروں کے سامنے سے نہ کھائیں. لیکن اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ دوسروں کی جو طبعی طور پر تکلیف ہے، اذیت ہے، اس کو اوائڈ کرنے کی حد الامکان کوشش کرنا جتنا ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ہر ایک کی طبیعت کو جو ہے وہ کنٹرول تو نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کی طبیعت کے حساب سے کام نہیں کر سکتے کہ جس سے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خوش ہو، ہر ایک کو راضی رکھنا، ہر ایک کو خوش رکھنا یہ ممکن بھی نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر کوئی ایسا خلوق جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا تو ہم خیال رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ عمومی جو ہے جو خلق ہوتا ہے نا، عمومی اخلاق جو ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہوتے ہیں، یعنی وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کو اذیت سے محفوظ رکھ سکیں. پھر باقی یہ کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، آپ ہر ایک کی خوشی تو نہیں حاصل کر سکتے. بینگ سینسیٹیو، ٹھیک ہے، بینگ سینسیٹیو ٹو ادرس. بینگ سینسیٹیو کا مطلب یہ نہیں کہ خود جو ہے وہ چھوئی موئی بنے رہے، بلکہ بینگ سینسیٹیو ٹوورڈز ادرس یا فار ادرس. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ نمبر 23 یہ ہو گیا. اچھا، چھوارے کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یعنی ایک ایکولی سورٹ آف اسپریڈ آؤٹ کیا ہوا ہوتا ہے برتن کے اندر، جبکہ دوسرا کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کہ اس وجہ سے چھوارے میں ہر طرف سے لے لیتے. अच्छा, नुक्ता नंबर 24 फरमाते हैं कि इब्न सन्नी रहमतुल्लाह अलैह ने या सुन्नी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस रजुल्ला ताला अन्स रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौसम का पहला पहला फल लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोनों आँखों से लगाते, जैसे यानी मौसम का पहला फल जो है वो खजूर हो या कोई और इस किस्म का खरबूजा, तरबूजे के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि भी वो नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद था और जाहिर है मदीना मुनव्वरा में खरबूजा जो है वो उगता था, ठीक है। तो जब नई नई फसल शुरू होती थी खरबूजे की, तो पहले जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास लाई जाती थी, ठीक है। यानी जो इस तरह का एक मुआशरा होता है ना, एक सोशल सेटअप बनता है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग शख्सियत होती है, जो सबसे बड़ा होता है ना, तो उसके ताजीम में और उसके मुकाम के मर्तबे के के एहस के इज्जत के तौर पर जो अल्लाह ताला की नेमत मिल रही है तो वो नेमत जो है वो सबसे पहले उसके पास लाई लाई जाती थी, ठीक है। तो ये एक सोशल फैब्रिक का एक पार्ट होता है। जैसे आप एक घरेलू निजाम के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर कोई बड़ा होता है ना, तो उस बड़े की ताजीम, उस बड़े की इज्जत जो होती है वो उस घर का एक लाजमी जुज होता है, ठीक है। आजकल हम इस तरह के फैमिली सिस्टम्स के अंदर ज्यादातर नहीं रह रहे हैं, फैमिलीज जो है वो ब्रेक हो चुकी हैं, बहुत दूर दूर जो है वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अक्सर लोग जो है वो इस चीज से वाकिफ नहीं होते, ठीक है, और ये चीज जो है वो कभी देखे बगैर ही जो है वो नस्लें बड़ी हो जाती हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं तो अक्सर जो है वो हमारे घरों के अंदर जो है कोई बुजुर्ग नहीं साथ रहता है ना, ज्यादातर लोग जो है वो या तो मुल्क से बाहर रहते हैं या शहर से बाहर रहते हैं या अपने बुजुर्गों से दूर रहते हैं, और बुजुर्गों के साथ रहना जो है वो आजकल बहुत ही मायूब समझा जाता है। जब शादी होती है तो शर्त आगे से ये लगाई जाती है कि जी कोई कोई इन लॉस के साथ तो नहीं रहना है, ठीक है, इन लॉस के साथ यानी सास ससुर जो है ना वो साथ नहीं रहेंगे, हमने अलग घर लेना है, अलग ही रहना है, ठीक है। तो अब बुजुर्गों को देखे बगैर ही जो है वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो नजर ही नहीं आ रही होती हैं कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल एक ही घर के अंदर सारे के सारे घुस करके रहें, बल्कि एक निजाम ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर के आप करीब करीब रहते हो और मौजूद हों बुजुर्ग, ठीक है, यानी बराबर वाले घर के अंदर मौजूद हों, या कम से कम जो है वो उस जगह पर उस शहर के अंदर उनके घर मौजूद हों, ठीक है। इसका मतलब खाली ये नहीं है कि सिर्फ एक घर के अंदर या एक ही जिसको क्वार्टर कहते हैं उस क्वार्टर के अंदर ही जो है वो सारे के सारे साथ रहेंगे, तभी जो है वो उनके मुकाम और मर्तबे का इल्म होगा, वरना वरना नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आज तो मसला दूसरा खड़ा हुआ है ना कि बिल्कुल ही यानी शहर के अंदर ही नहीं रहते, शहर के यानी जब यार जिस पहले भी आप लोगों को बता चुका है कि जब हम बच्चे थे तो हमारे नाना नानी जो है वो एक घर के अंदर रहते थे और वहां पे अक्सर हम लोगों का आना जाना होता था, एक शहर के अंदर थे सारे के सारे। दादा का तो इंतकाल हो चुका था लेकिन दादी जो है वो हयात थी, तो दादी के पास जो है वो अक्सर आना जाना जो है वो लगा रहता था, ठीक है। वो अपने बड़े बेटे के घर पे रहती थी लेकिन बाकी लोग, बाकी जो उनकी औलादें थी वो उनके पास आती जाती रहती थी और अपने बच्चों को साथ लेकर के जाते थे वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रो अप हुए जब हम छोटे थे, ठीक है। लेकिन जब हम 20 साल तक के भी हुए हैं ना, तो उसके बाद से जो है वो यानी जो जो जॉब मार्केट जो है वो एक्सप्लोड हुई है और फिर उसके बाद जो है वो लोग अपने शहरों से बाहर जाना शुरू हो गए और ज्यादातर जो है मुल्क से बाहर ही जाना शुरू हो गए। तो फिर मुल्क से बाहर जब जाते हैं तो फिर तो उसके बाद मुल्क में सफर करके वापस आना ये एक मुश्किल काम होता है, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा साल में एक दफा फिर आप आ सकते हैं अगर आप करीब के मुल्क में रहते हैं, वरना अगर आप जो है वो अमेरिका जैसे दूर या ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर मुल्क में रहते हैं तो फिर तो साल में भी आना मुश्किल हो जाता है, 2 साल में कभी एक दफा आ रहे हैं, ठीक है, और चंद दिन के लिए आ रहे हैं, उसके बाद जो है आपने वापस चले जाना है। तो ये फिर इस तरह से जो खानदानी रिवायात होती है ना, जो कि असल में دین سے آئی ہیں، یہ خاندانی روایت ہماری یہ ہندوازم اور عیسائیت اور یہودیت سے نہیں آئی ہیں، یہ یعنی مدینہ منورہ سے یہ روایات آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان روایات سے پھر جو ہے وہ ہماری واقفیت ختم ہو گئی ہے تقریباً. تو نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ موسم کا پہلا پہلا پھل جو ہے وہ لایا جاتا تھا کہ بھئی آپ سب سے بڑے ہیں اس پورے کی پوری سوسائٹی میں، اللہ کے نبی ہیں اور ہمارے جو ہے وہ امیر ہیں. تو نبی علیہ السلام پھر آگے سے اس کے اوپر کیا عمل کرتے تھے کہ باقاعدہ اپنی آنکھوں سے اس کو لگاتے تھے، یعنی بہت ہی زیادہ کسی چیز کی عزت اور اکرام کیسے کیا جاتا ہے کہ اس کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، پھر دونوں ہوٹوں سے لگاتے تھے، کھاتے نہیں تھے ہوٹوں سے لگاتے تھے، اور فرماتے تھے یعنی پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہم کما اریتنا اولہ فارینا آخرہ، ارینا آخرہ، یعنی کچھ لوگ اس کو ارینا بھی پڑھتے ہیں. تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں اس کا اول دکھایا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس کا آخر بھی دکھائیے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں جو پھلوں کی جو فصل آئی ہے، تو اس فصل کو جو ہے وہ آپ برقرار بھی رکھیے کہ یہ ہمارے ہمارے گھروں کے اندر اس کا پھل آتا رہے حتیٰ کہ اس کا موسم مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں جو ہے وہ کوئی آندھی طوفان آ کر کے جو ہے وہ یہ فصل تباہ ہو جائے، یا اس کے اندر جو ہے وہ کیڑے وغیرہ لگ کر کے یہ پھل جو ہے وہ استعمال کے قابل نہ رہے، ٹھیک ہے. بلکہ مکمل جو جو ٹائم پیریڈ اس کا ہے، نیچرل ٹائم پیریڈ، اس میں ہم اس کا پھل کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں حتیٰ کہ جو ہے وہ ہمیں اس کا اختتام تک جو ہے وہ بھی پھل ہمیں دکھلا دیجئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پاس بیٹھے ہوئے بچوں کو دے دیتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے مجلس کے اندر بچے بھی موجود ہوتے تھے، جبھی تو دیتے تھے ان کو نبی علیہ السلام کے اپنے نواسے نواسی اور دوسرے صحابہ کے جو ہے وہ چھوٹے بچے وہ بھی موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو گویا کہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ جب کینڈیز آتی ہیں تو کینڈیز جو ہیں وہ بچوں کو دے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں الحمدللہ یہ والی کینڈیز نہیں ہوتی تھی، تو پھل ہی جو ہے وہی کینڈی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، تو بچوں کو دے دیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 25. اچھا یہ ہم سب پڑھ کیوں رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے تذکرے کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی خاطر، علم حاصل کرنے کی خاطر، اور تذکرے سے جو ہے وہ ذات کی محبت بڑھتی ہے جس ذات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت و الفت جو ہے وہ مزید بڑھے گی اس تذکرے کو پڑھنے سے. اگلا پوائنٹ کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اور حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں تابعی حضرات ہیں، تو ان سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں خوشبودار تیل وغیرہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیل میں انگلیاں تر فرما کر استعمال فرماتے. خوشبودار تیل یعنی جس کو یعنی کیا کہتے ہیں، عطر، عطر بھی جو ہوتا ہے وہ تیل ہی ہوتا ہے نا، جو ٹریڈیشنل پرانا عطر ہے. پرفیومز تو ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی یعنی جو سپرے کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو یعنی بہت ہی پتلا قسم کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے، وہ تو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ تو فوراً ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو عطر ہوتا ہے تو وہ اصل میں دہن تیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہاں پہ عطر کا ذکر ہے، تو اس میں نا اپنی انگلیاں تر فرما کر استعمال کرتے تھے. یعنی اب تو خیر وہ ہے ہوتا ہے نا، عطر کی جو شیشی ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹا سا ایک نیڈل سی ہوتی ہے، پن سی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر ڈبو کر کے پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر انگلیوں کے اوپر لگاتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو کسی پیالے کے اندر لا کے دیا جائے، جو کہ اس زمانے میں ظاہر اس طرح کی شیشیاں نہیں ہوتی تھیں عطر والی، تو پیالے میں آتا تھا، تو پھر ظاہر اس کے اندر انگلی ڈال کر کے ہی اس کو تر کیا جائے گا نا. اچھا پھر پوائنٹ نمبر 26 فرماتے ہیں کہ طبرانی رحمتہ اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی جو دائیں رخسار، اس کو کلہ بھی کہا جاتا ہے، اردو والا کلہ، उसके नीचे जो है ना वो अपने दाएं हाथ को रख करके और सीधे करवट सोते थे नबी अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह से सो सके यानी उसको नींद आए उसको जरूर इस तरह से सोना चाहिए। और अगर कुछ लोग हैं उनकी एक नींद की ऐसी एक आदत बन गई है कि वो ऐसे अगर लेटेंगे तो उनको नींद ही नहीं आएगी, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है वो जहनी मरीज बन जाए ना सो करके। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर कम से कम बेशक जागती ही हालत में कभी नींद नहीं आ रही, लेकिन कम से कम मैं आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरी करने के लिए इस तरीके से लेट जाऊं, और फिर बाद में जो है वो तभी तौर पर जिस तरह से भी मैं कंफर्टेबल होता है मैं उस तरह से सो जाऊं। पेट के बल सोना, ये हदीस मुबारका के अंदर भी इसकी ममानियत आई है और मेडिकल साइंस भी जो है वो इसको बाद में प्रूफ कर रही है कि ये जो है वो इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह होता है पेट के बल सोना। ठीक है, पीठ के बल सोना ये भी कोई बहुत अच्छी आदत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी गुंजाइश है। और राइट करवट सोना, लेफ्ट करवट सोना भी जो है वो भी इजाजत तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा पसंदीदा नहीं है और उसके फिर मेडिकल रीजंस भी बाद में पता चले हैं कि लेफ्ट करवट ही बाएं करवट सोना जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन राइट करवट सोना जो है वो सबसे अच्छा है। अलबत्ता अगर आप मुस्तकिल राइट करवट सोते हैं तो हम जैसे जो कमजोर हैं जिनकी हमारी गजाइत की भी बहुत ही बुरे हालात हैं, ठीक है, तो हमारे तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। हमेशा अगर आप एक ही करवट पे सोएं तो इस वजह से करवट बदल लेना जो है वो उससे मुजायका नहीं है। ठीक है, कर लेना चाहिए, दर्द कर लेना जो है वो मकसूद नहीं है, ये कोई फर्ज वाजिब के दर्जे में नहीं है कि इसकी वजह से आप अपने आप पे मुसीबत उठाना शुरू कर दें। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो चैट विंडो सामने मौजूद है, इसमें आप क्लिक करके पूछ सकते हैं। अगर हमें उसका जवाब आता होगा तो हम बता देंगे, नहीं आता होगा तो आपसे माजत कर लेंगे। पॉइंट नंबर 26, ये तो पढ़ लिया, 27 फरमाते हैं कि हजरत शिराजी रहमतुल्लाह ने अलकाब में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया, यानी अपनी किताब में आयशा सिद्दीक तआला से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर में तेल लगाने का कसद फरमाते तो बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अबरू से लगाना शुरू करते थे। अबरू, मैं तो इसको इस तरह ही पढ़ता हूँ, अबरू, या कोई और तरीका है तो आप बता दें कैसे बताएंगे। खैर, अबरू का मतलब जो आईब्रोज होती है ना, आंखों के ऊपर जो, खैर खवातीन को बताना गोया कि सूरज को चिराग दिखाना वाली बात है, तो राइट आईब्रोज जो है ना वहां से लगाना शुरू करते थे, फिर दोनों आंखों पर लगाते, फिर सर पर लगाते थे। तो तेल जो है ना वो थोड़ा सा आंखों के ऊपर लगाना, ये भी कहीं पढ़ा था कि भवें, हाँ भवें भी इसको आमतौर पे कहा जाता है। अबरू जो है जरा पुराना अतरूक सा लफ्ज है। अब तो आई लैशेज नहीं बल्कि आई ब्रोज। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बोलना ही है तो फिर वो अंग्रेजी भी जरा सही बोलने तो ज्यादा अच्छा है, ब्राउज नहीं होती बल्कि ब्रोज होती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 28, अबू दाऊद तिरमिजी और तियालसी रहमहुल्लाह ताला ने हजरत अनस और हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कजाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते तो अपने कपड़े को उस वक्त तक ना उठाते जब तक के जमीन से करीब ना हो जाते ताकि बगैर जरूरत सतर ना खुले। ठीक है, सतर जिस्म के उस आंखें का मतलब पलकें, पलकें जो है ना उनको आई लैशेस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अबरू है ना ये आई ब्रोज होती हैं जो कि आँख के ऊपर होती हैं, जो ज्यादा मोटी और गहरी होती है। ऊपर से मुराद मतलब ऊंची, आँख से ऊंची, ठीक है, ऊपर वाली भवें उसको कहते हैं। अच्छा, तो सतर जो है वो उस जिस्म के हिस्से को कहा जाता है कि जिसको छुपाना फर्ज है। ठीक है, मर्द का सतर हमारे अकाबरीन यानी जो फ़िक़्हे हनफिया है उसमें मर्द का सतर जो है उसके अंदर मर्द की जो नाफ है वो भी दाखिल है और उसका जो घुटना है, घुटना नीज वो भी दाखिल है, और यानी नाफ से लेकर के नीज तक पूरा का पूरा, जिसके अंदर के आपके जो है वो राने भी आ जाती हैं, थाइस भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो बाथरूम का जो है वो तो यानी बदरजा उला उसके अंदर दाखिल है, ठीक है, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा पूरा सतह है। इसी वजह से जो हम लोगों के यहाँ अल्लाह रहम करे या अल्लाह माफ करे हमें, जो हॉकी और इस किस्म के जो खेल होते हैं, तो उसमें तो फिर इतनी ऐसी चीज पहन करके मर्द खेल रहे होते हैं कि जो के सतर को भी नहीं छुपाती, ठीक है। उसी तरह एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे जो है वो सतर ही खोल करके जो है एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सतर का एक तो इल्म होना फर्ज है, क्योंकि उसको छुपाना भी फर्ज है, इल्म नहीं होगा तो कैसे छुपाएंगे। औरत का सतर जो है उसके अंदर उसका पूरा बदन आ जाता है सिवाय उसकी यानी चेहरे के चेहरा जो है वो सतर के अंदर दाखिल नहीं है, और हथेलियां जो है वो सतर में दाखिल नहीं है, ठीक है। और पैर की जो है वो नीचे का जो पार्ट है वो सतर के अंदर दाखिल नहीं है, लेकिन बाकी सारा का सारा सतर है, ठीक है। हिजाब एक अलग चीज होती है, हिजाब का मतलब होता है कि अलग अलग होना, जिसके अंदर के चेहरे का पर्दा भी दाखिल है, ठीक है। लेकिन सतर जो है ना वो एक एक अलग चीज है, ठीक है, जो कि इंसानियत में हमेशा से सतर जो है वो एक ही रहा है। हिजाब के अहकाम जो है वो 5 हिजरी को आए थे, सतर के अहकाम 5 हिजरी को नहीं आए थे, बल्कि सतर के अहकाम जो है वो शुरू से हैं, जिसके अंदर बाल दाखिल है सतर के, ठीक है। तो गैर महरम मर्दों से जो है वो औरतों को बाल छुपाना ये फर्ज है, जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, ठीक है, सतर छुपाना उसी तरह से फर्ज है। और अब हमें तो पता भी नहीं के बाल जो है वो सतर के अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर जो बात हो रही है, तो यहाँ पर तो कदा हाजत के लिए जाना तो वहां पर सतर खोलना, तो आगे हजरत इसकी तशरीह में लिखते हैं कि सतर खोलने की जरूरत तो उसी वक्त होती है जब कदाए हाजत के लिए आदमी बैठ जाए। पहले से सतर खोलने की चूंकि हाजत नहीं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन जरूरत के वक्त सतर खोलते थे, ठीक है। तो बिला जरूरत सतर खोलना जो है वो उसकी उसकी इजाजत भी नहीं, मतलब वो पसंदीदा नहीं है बिला जरूरत सतर खोलना। हालांकि आप बाथरूम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो बिला जरूरत सतर खोल करके बाथरूम के अंदर जो है वो रहना ये यानी खिलाफ सुन्नत है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जो ये फेल है उसके अंदर थोड़ी सी तफसील इतनी भी याद होनी चाहिए या मालूम होनी चाहिए कि उस जमाने में जो कजाए हाजत के लिए जगह होती थी ना वो बंद नहीं होती थी, वो एक कमरा नहीं होता था छोटा सा, जिस तरह हमारे यहाँ बाथरूम का एक एक कमरा नुमा चीज होती है ना वो, और वो जब आप जाते हैं तो आप दरवाजा उसको बंद कर देते हैं, अब जो है वो कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता, कोई अंदर देख नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इस किस्म का जो कमरा होता था वो यानी बाकायदा एक छोटा सा बैत हो गया ना, बैतुल खला, ठीक है, तो उस जमाने में ये बैतुल खला नहीं होता था, ठीक है। खला तो होता था यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि थोड़ी ऐसी सी जमीन हो के नजासत वहां पे डाली जा सके, लेकिन बैत नहीं होता था, खुला बाथरूम होता था। इसी वजह से लोग जो है वो हत्ता के औरतें भी आबादी से दूर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ओट में जा करके, ठीक है, कि आसानी से कोई देख ना सके और जहाँ पे कोई लोग ना मौजूद हो वहां पे जा करके कजाए हाजत से फारिग होते थे, मर्द और औरत दोनों। आज भी दुनिया के अंदर ऐसी जगह मौजूद है कि जहां पर लोग जो है ना इस तरह से ओपन एयर टॉयलेट्स में, खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी तादाद लोगों की जैसी जाती है, तो इस तरह का जो बाथरूम होता है ना तो वहां पर तो बदर बहुत ज्यादा जो है वो इस बात का ख्याल रखना कि सतर जो है ना वो कम से कम वक्त के लिए खोले, और वो भी अगर खोले तो भी इस तरह से कि ढका छुपा हो, या तो कपड़े का ओवरऑल ऊपर से जो है वो इस तरह से कपड़ा हो कि जिससे कि इंसान का सतर कहीं से नजर ना आता हो, या ये कि किसी ओट की ऐसी जगह पर हो यानी किसी चट्टान के पीछे या किसी इस किसी और किसी चीज के पीछे कि जहां पे कोई देख ना सके, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले थे। 29 पॉइंट या 29 पॉइंट के अबू दाऊद नसई और इबन माजा रहमहुल्लाह ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में बगैर गुस्ल किए सोने का इरादा फरमाते, ठीक है, यानी जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं तो उससे जो है फिर जनाबत की हालत में इंसान दाखिल हो जाता है, तो ये जो है वो यानी बड़ी नापाकी की हालत होती है। तो अगर अच्छा, इससे निकलने के लिए गुस्ल, यानी जो शरी गुस्ल होता है, वही एक तरीका है जनाबत से बाहर निकलने का। जिस तरह हैज और निफास से बाहर निकलने का तरीका जो है वो शरी गुस्ल होता है, उसी तरह जनाबत से। हैज और निफास मर्दों के ऊपर नहीं आता, सिर्फ औरतों के ऊपर आता है, लेकिन जनाबत जो है वो औरत मर्द दोनों के ऊपर आती है। तो शरी गुस्ल, गुस्ल का क्या मतलब होता है कि मुंह के अंदर भी पानी डाला जाए, कुल्ली करके के पानी बाहर निकाला जाए, और नाक के अंदर भी पानी चढ़ाया जाए और फिर उसको बाहर छिड़का जाए, और फिर पूरे के पूरे बदन के ऊपर पानी बहाया जाए। ये तीन चीजें जो है ना वो शरी गुस्ल के अरकान है। अगर ये तीन ना की जाए तो फिर शरी गुस्ल नहीं होता। यानी मुंह के अंदर अगर ना साफ किया जाए और नाक के अंदर अगर पानी ना चढ़ाया जाए, बल्कि सिर्फ जो है वो ऊपर से पानी पूरा पूरा डाल दिया, आपने बाल भी धो लिए और हर जगह पानी पहुंचा दिया, लेकिन अंदर पानी नहीं पहुंचाया मुंह के और नाक के, तो शरी गुस्ल नहीं हुआ। ठीक है, तो शरी गुस्ल जब नहीं हुआ तो फिर ना तो हैज से बाहर निकल सके, ना अगर निफास की हालत में थे तो उससे बाहर निकल सके, ना जनाबत की हालत से बाहर निकल सके, ना बाकी जो है वो बदस्तूर मौजूद है। ठीक है, तो बहरहाल ये तो शरी गुस्ल की थोड़ी सी तफसील हो गई। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अगर गुस्ल किए बगैर ही सोने का इरादा फरमाते थे तो वजू फरमा लेते थे। ठीक है, और जब गुस्ल करने से पहले खाने या पीने का इरादा होता तो दोनों हाथ गट्टों तक धो लेते, फिर खाते पीते। ठीक है, यानी जो हमारे पूरे दो हाथ होते हैं कलाई तक, हम गट्टों को जो है वो कलाई कहते हैं, तो उनको धो करके फिर खाते पीते। तो एक तो ये भी है मामला के, यानी इसमें थोड़ी तफसील ये भी है कि जो वजू फरमा लेते थे ना, तो उसके बारे में उलमा ने ये भी लिखा है कि यहाँ पे वजू से मुराद ये है कि शर्मगाह को धो लेते थे। ठीक है, यही यही यहाँ पर वजू मुराद, नमाज वाला वजू नहीं जो नमाज के लिए वजू करते हैं, बल्कि शर्मगाह को धो लेना, ये यहाँ पे वजू मुराद है। ये इस हादिस ने कहीं पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त वो रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से करने के बाद फिर आप सब जो है वो सोया करते थे। अच्छा, और बाकी जो हाथ धोने वाली बात है, तो इससे जो है वो तबीयत की नफासत और नजाफत का एहतमाम जाहिर होता है कि भाई ये तो उस हालत के अंदर इंसान के हाथों के अंदर नजासत लग सकती है, तो उन हाथों से जो है ना वो कोई खाने की चीज लेकर के मुंह में डालना, इससे कराहियत होनी चाहिए, तबीयत में कराहियत होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत में ऐसी कराहियत थी कि जो मुंह के अंदर जाने वाली चीज है तो वो ऐसे हाथों से कि जिनके अंदर गंदगी के मौजूद होने का एहतमाल है, उन हाथों से इन चीजों को उठा करके नहीं खाना। ठीक है, तो खाने से पीना, खाने से पहले हाथ धोना ये वैसे भी सुन्नत है। ठीक है, और इस मौके पर भी इसका एहतमाम करते थे। उस जमाने में जैसे कि बाथरूम्स तो जो है वो मौजूद नहीं होते थे, लेकिन पानी जो है वो घर के सहन के अंदर होता था। ठीक है, और जो गुस्ल का मामला होता था ना, उसके लिए आबादी से बाहर नहीं जाते थे, गुस्ल करने के लिए आबादी से बाहर नहीं जाते थे, बल्कि कच्ची जमीन होती थी घर की किसी जगह पर, जैसे सहन में है या किसी और जगह पर है, तो वहीं पर जो है वो गुस्ल किया जाता था। ठीक है, और ये यानी ये कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल मामला नबी अलैहिस्सलाम का था, बल्कि उस जमाने के अंदर यही मामला हुआ करता। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है कि हाकिम अबू दाऊद रहमतुल्लाह रहिमहुल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला बिन यजीद रजी अल्लाह तआला से रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को रुखसत फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातीम अमालिकुम, अस्तौदिउल्लाह, अस्तौदिउल्लाह का मतलब क्या कि अल्लाह के हवाले, यानी तुम हमसे दूर जा रहे हो। ठीक है, तो अगर हमारे सामने होते तो वो तो अल्लाह के हवाले, तुम यहाँ भी हमारे सामने भी, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत हकीकी मानों में तो अल्लाह ही कर सकता था, लेकिन असबाब के दर्जे में जैसे अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत अता फरमाई है कि हम अपनी हिफाजत और अपने जानने वालों की, साथ रहने वालों की हिफाजत का कुछ एहतमाम करते हैं ना। ठीक है, तो अब जब तुम हमारे से दूर जा रहे हो तो वहां पर तो हम असबाब के दर्जे में भी तुम्हारी हिफाजत का कोई एहतमाम नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस वजह से जाने वाले को अस्तौदिउल्लाह, ठीक है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना अल्लाह हाफिज, ठीक है, फी अमानिल्लाह, सही है? तो ये यही दुआ है, और बिल्कुल सुन्नत के जो अल्फाज हैं वो है अस्तौदिउल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह के हवाले, अल्लाह की हिफाजत के हवाले मैं तुम्हें करता हूँ, और तुम्हारी दीनकुम, तुम्हारे दीन को, यानी तुम्हारा जो जो बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारा जो फेथ है ना, वो फेथ सबसे अहम चीज है तुम्हारे लिए, तो मैं अल्लाह के की हिफाजत में तुम्हारे फेथ को देता हूँ, तुम्हारे दीन को देता हूँ, ठीक है? वो अमानतकुम, और तुम्हारी इस यानी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारे इस खुलुक को, तुम्हारी इस यानी अमानतदारी की सिफत, ठीक है, कि तुम जिस तरह से हमारे साथ रहते हुए एक अमानत और दयानत वाली जिंदगी गुजारते हो, तो दूर भी रह करके तुम अमानत और दयानत वाली जिंदगी गुजार सको, ठीक है? तो अल्लाह ताला तुम्हारी इस अमानतदारी की सिफत की भी हिफाजत फरमाए। वा खवातीमा आमालकुम, और तुम्हारे आमाल का जो जो अंजाम है वो भी मैं अल्लाह ताला की हिफाजत में देता हूँ, यानी तुम्हारा जो अमल है ना वो अच्छी मकबूलियत के ऊपर खत्म हो, ठीक है, अल्लाह ताला की कबूलियत के ऊपर खत्म हो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे अमाल करने की तौफीक हमसे दूर भी अता फरमाता रहे, ठीक है, कि तुम्हारे अमाल जो है अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होते रहे, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं वो तो कैसी कॉम्प्रिहेंसिव, कैसी मुकम्मल, कि उसके अंदर जो है वो इन इन चीजों का भी ख्याल, जिनका कि हम आमतौर पर सोचते ही हैं जिन चीजों के बारे में, ठीक। अच्छा, 31वां पॉइंट, के खतीब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पहनते तो जुमे को पहनते थे, ठीक है? तो आज भी कुछ लोग इस बात का एहतमाम कर लेते हैं, जिनके कपड़े जो है वो वीक के दौरान जो है वो गंदे नहीं हुए हैं, तो तब्दीली के लिए जो है ना वो जुमे का दिन, क्योंकि जुमे के दिन जो है वो जुमा जो है वो छोटी ईद भी होती है मुसलमानों की, यानी बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है जुमे का दिन हमारे लिए, हर हफ्ते में आता है, और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मर्द जाते हैं, तो उसमें साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन करके, नए कपड़े पहन करके जाना, ठीक है? फिर ये भी कि उस जमाने में लोगों के पास पूरी पूरी वार्डरोब्स नहीं हुआ करती थी, एक लंबी कतार नहीं होती थी कपड़ों की, बल्कि चंदे कपड़े ही इंसान के पास हुआ करते थे, ठीक है? तो इस वजह से ना अपना कपड़ा किसी को हदिया कर देना ये एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि आपके अपने पास इतने कम कपड़े हैं। आज तो अगर आपके पास माशाल्लाह वार्डरोब के अंदर 40 ड्रेसेस हैं, तो उसमें से उठा करके किसी को दे देना ये कोई बड़ी बात नजर नहीं आती, क्योंकि अब तो फैक्ट्रीज के अंदर ये चीजें बनती हैं ना, और बहुत सस्ती हो गई हैं, फैब्रिक जो है वो बहुत सस्ता और बहुत ही आम अवेलेबल मटेरियल मौजूद है, मटेरियल के तौर पर मौजूद रहता है। वो जमाने में फैक्ट्रीज ही होती थी ना इस तरह से, ठीक है, बहुत कम कम होती थी वो फैक्ट्री, वो भी जाहिर है उसमें प्रोडक्शन इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं होती थी जैसे आज की फैक्ट्रीज में होती है। इस वजह से लिबास जो है ना वो जमाने में एक बहुत बड़ी कमोडिटी होता था, बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट कमोडिटी के तौर पर उसको लिया जाता था। तो खैर, आप सल्लम जुमे को नया कपड़ा पहनते थे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, कि हकीम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिसवाक फरमा लेते तो आपके पास जो बड़ा शख्स होता, आपके पास यानी करीब में जो बड़ा शख्स होता उसको इनायत फरमा देते थे, और जब कुछ पानी वगैरह पीते तो बचा हुआ उस शख्स को इनायत फरमाते जो आपकी दाएं तरफ होता था, ठीक है? तो जब इस तरह की सेटिंग में है कि जहां पर के दूसरे लोग मौजूद हैं, तो तबर्रुकन, ठीक है, यानी अपने तबर्रुक के तौर पर जो है ना वो जो 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 सीनियर मोस्ट बंदा साथ होता था उसको अपना मिसवाक अता फरमाते थे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि सफर के अंदर बस एक ही दफा बस मिसवाक इस्तेमाल किया, दूसरी दफा जो है वो मिसवाक इस्तेमाल नहीं करते थे। सफर में इंसान एक ही मिसवाक लेकर के चलता है, पूरा का पूरा स्टॉक तो नहीं लेकर के चल रहा होता है कि इधर उधर एक मिसवाक इस्तेमाल करी फिर फेंक दी, फिर दूसरी मिसवाक इस्तेमाल करी फिर फेंक दी, ठीक है? बल्कि यहाँ पर बात जो हो रही है वो ये कि जब आपके पास इस तरह के लोग मौजूद होते थे और शहर के अंदर अपने घर के अंदर होते थे या घर के करीब होते थे, तो भाई और मिसवा क्या आ जाएंगी, ये वाली जो है वो किसी को तबरुकन दे दी, क्योंकि अलबरकतु मा अकाबिरकुम, तुम्हारे बड़ों के साथ बरकत है, तो तुम्हारे बड़ों के जो इस्तेमाल शुदा चीजें होती है ना उनके अंदर भी बरकत है। ठीक है, तो इस तरह से फिर जैसे झूठा झूठा पानी, किसी बुजुर्ग का जो है वो झूठा पानी पीना बरकत की नीयत से, इसमें कोई यानी कोई बुरी बात नहीं है बल्कि ये अच्छी बात है। ठीक है, उसी तरह से इस्तेमाल शुदा मिसवाक जो है वो कोई इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए ये बरकत का सबब बनता है। तो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा इसका एहतमाम भी किया करते थे, किसी को अपनी बरकत वाली चीज जो है वो दे दे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी इस वाली क्लास को खत्म करते हैं, रोकते हैं, और अगली क्लास थोड़े चंद मिनटों के बाद शुरू करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक ले रहे हैं।